मैं अभी आ रहा हूँ, मैं यही हूँ, और सुबल को ले लिया साथ में, मधुमंगल को साथ ले लिया और चल पड़े कुसुम सरोवर में पहुंच गए। वहां से सूर्य कुंड पहुंच गए, फिर वहां से वो सब लीलाएं करने के बाद में फिर यहाँ पर लौट आए। मधुमंगल के साथ में कुछ हंसी भी लगी थी। इतने में 3 बज गया, गायों को लेकर के फिर लौट रहे हैं और गोपियां उनको प्रतीक्षा कर रही है, गोप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबको बड़ा जसोदा मैया भलैया लेने लगी, आरती उतारने लगी, घर में गए, उनको स्नान कराया, गोदोहन कराया, फिर सुलाया। जसोदा जी भी सो गई, सब सो गए, कृष्ण जगे रहे। क्या क्या ये पता नहीं। इसके बाद में सवेरा हुआ, ललिता इत्यादि जी उनकी आरती उतार रही है। अब इसके बाद में फिर कृष्ण ने स्नान किया, गोपियों ने भी स्नान किया, उनका वेश बनाया। जसोदा जी फिर जसोदा के घर में राधिका जी आए और फिर रसोई बनाया, कृष्ण खिला, फिर गोचारण के लिए चले। इसको कहते हैं बहुत सी लीलाएं एक साथ माला के रूप में गूंथ करके, जब स्वाभाविक रूप में अपने आप पैद धारावत अनर्गल रूप में चिंतित होने लगे, तो इसको कहते हैं। यह साधारण लोगों के लिए नहीं है, एक दर्शन ही नहीं ध्यान में आता है तो इतनी लीलाओं का अपने आप स्वाभाविक रूप में आ जाना यह सहज बात है। ये महापुरुषों के लिए है जो अंततः उत्तम भागवत होने जा रहा है, उन लोगों के लिए। किंतु हम लोग भी उनके उत्तराधिकारी हैं, हैं? उत्तराधिकारी एक छोटा सा बच्चा आज जन्म लिया, वो माता पिता के संपत्ति में अधिकारी है कि नहीं? यदि जीवित रह गया वो अधिकारी, हम लोग भी भजन राज्य में जीवित रहे, अपराधी होकर के उससे खलित नहीं हो गए तो अधिकारी जरूर अधिकारी हो। कोई भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करने वाला, हमारे गोस्वामी का अनुगमन करने वाला, इस रागानुग भक्ति का अधिकारी है। जन्म से ही सिद्ध से गौड़ीय वैष्णव में आना ही उनके लिए जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, किंतु वो जीवित रहना चाहिए, मर नहीं जाए। मरना माने क्या? अपराध इत्यादि से। बृहद भगवतामृत में स्वारसिक भजन, यही गोप कुमार वहां पर ब्रज में पहुंचता है, क्या सुनता है? सिंगे बज रहे हैं, गायें रंबा रही हैं, गोप गोपी दौड़ रहे हैं, अंधे दौड़ रहे हैं अंधों को पकड़ करके, कहां जा रहे हो? कृष्ण गोचारण जा रहे हैं, पूर्वान्न हो गया या शाम हो गई, शाम हो गई मैंने ब्राह्मण ने देखा जैसा कृष्ण अब आएंगे स्वस्तिक वाचन करना है, गोप गोपियों ने सुना जो शाम हो गई अब कृष्ण लौट रहे हैं, जो सोदा मैया ने सुना जो शाम हो गई तो क्या करेंगी? आरती उतार कर लेकर के अपने सहेलियों के साथ में वहां पर आएंगे। गोपो ने नंद बाबा ने क्या किया? जल्दी से काम छोड़ करके वो भी शाम हो गई चले। जो जो जिसने सुना शाम हो गई अपने अपने भाव के अनुसार अर्थ करके वैसे ही भाव में विभावित हो गए। ये सब जब देखा कौन? गोप कुमार देखा। तो ये गोप कुमार की वो जो जो विचार है, जो जात देख रहे हैं, क्या है? बृहदभवन के उत्तरखंड में, माने गोप कुमार की लीला को जो भजन का उदाहरण दिया गया, वो भजन का उदाहरण है किस लिए? लोभ उत्पन्न करने। बृहद भगवान पढ़े और उसको लोभ न हो तो वो क्या है? जीवित रहता हुआ मरा है,
जीवन न भी
वो मरा हुआ व्यक्ति है। उत्तराखंड में उदाहरण जिस भजन का गण, वह सार्वजनिक भजन का सोपान मात्र है, वह सोपान मात्र है। अतः प्रिय सखा, प्रिय नर्म सखा भाव से भजन की सार्वजनिक पद्धति है। यहां तक मंत्र की स्वार्थ की व्याख्या दी गई। गोपाल भवर गई सखीर भव धीर बने सदा बंसी मुखो रक्षति वन्य भूषण गोपांगना वर्ग विलास लंपटो धर्म सतांग लंघयति तरो यथा। इसमें मंत्र में उपासना में कृष्ण की एकत्र स्थिति का वर्णन है। इसमें प्रक्रिया की परिपाटी संभव नहीं है। अच्छा, उज्जवल नदी के इस श्लोक की टीका में जिसमें ये बतला रहे हैं, जी गोस्वामी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने स्वकीय प्रक्रिया के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो दोनों ही प्रकार के सिद्धांत अपने अपने स्थान पर उचित है। एक तत्व की दृष्टि से ले रहे हैं और दूसरा रस की दृष्टि से ले रहे हैं, है? दोनों अपने अपने स्थान पर है। तत्व की दृष्टि से जीव गोस्वामी विचार कर रहे हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती रस की दृष्टि से विचार कर रहे हैं। केवल मात्र दृष्टिभंगी का अंतर है। जी गोस्वामी ने तत्व की ओर दृष्टि रख करके स्वकिया के पक्ष में कहा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लीला की दृष्टि रख करके परकिया भाव का समर्थन, लीला का भाव अर्थात रस के विचार। वैसे माया राज्य में अनंत ब्रह्मांड है, पर्दो में अनंत वैकुंठ है, उसी प्रकार कृष्ण लोक में गोलोक ब्रज में अनंत प्रकोष्ठ हो सकते हैं, उसमें एक में परकिया भी हो सकता है, इसमें क्या हर्ज है? इस प्रकार से समाधान किया है। एक प्रकाश में मिलन, एक प्रकाश में विरह, मिलन प्रकाश में मिलनानंद, विरह प्रकाश में विरह वेदना की अनुभूति अस्वीकार नहीं हो सकती है, तत्व ये हो सकता है। जी गोस्वामी ने गोपाल चंपू में गोलोक के बहुत प्रकाशों में से प्रकट अप्रकट प्रकाश में लीलाओं का वर्णन किया, जी गोस्वामी ने स्वयं किया है। भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं, कितना बजा? पांच हो गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का दूसरे दिन है, इनका और भी गंभीर है। कभी इसमें समाप्त आज ही सर भक्ति विनोद ठाकुर का यदि विचार सुनेंगे, वो जज है ना, वो जज के रूप में विचार करते हैं और विचार करके तब अपना विचार कहेंगे, वो सबको मान्य हो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंस राधा कंसनमस्तुते सप्त कंसन गौरंगी राधे बृंदावनेश्वरी विशुभांशुके देव प्रणमामि हरिते। हा देवी काकुवर गदगदयाच जाते निपत्त भो विदंडवत उद्घटरते अस्या प्रसादमबुधस्य जनस्य दृष्ट्वा गंधर्विकेतौ मे गणनन्दिते। अंगश्यामलिमिषताभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवनम् जगदंजागुदरोचितं विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदर राधास्कन्दनिवेशितो जलभुवनं भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै चित्तास्य कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वं शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणाम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदा कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमां तवैवास्मि तवैवास्मि मया विना चिदभिज्ञाय राधे तं मे मां शरणं।
भक्ति तत्व बहुत सरल मालूम पड़ता है, बहुत सरल। भगवान का नाम ले लिया, भक्ति हो गई। भगवान के मंदिर के सामने झाड़ू दे दिया, भक्ति हो गई। भगवान के लिए एक प्रदीप जला दिया तो ये भी भक्ति हो गई। ठाकुर जी को और कुछ नहीं किया, एक प्रणाम कर दिया तो भी भक्ति हो गई। बड़ी सहज दिखती है। दुराचारी व्यक्ति भी इसको कर सकता है। और सदाचारी भी व्यक्ति कर सकता है, सदाचारी व्यक्ति नहीं भी कर सकता है, कोई ये नहीं। सभी का इसमें अधिकार है, सभी लोग कर सकते हैं। किंतु ब्रज की भक्ति ये सहज नहीं है, ये बड़ी भारी क्लिष्ट और कठोर है, बहुत कठिन। बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभा। साधारण भक्ति, एक कबूतर था, डाल पर बैठा था, कबूतरी के साथ में बंदूक से उसे मार दिया या तीर से मार दिया, वो गिर पड़ा और वो छटपट करता हुआ मंदिर के चारों तरफ में परिक्रमा नहीं किया, वो तो वो अपने अभ्यास से गया, मरते मरते छटपट करता हुआ बेहोश स्थिति में, और उसकी भक्ति हो गई। एक बुढ़िया वो साधुओं को देख करके बड़ी बिगड़ती थी, और एक साधु उसके घर में जाते थे भिक्षा के लिए तो वो गाली गलौज करके भगा देती, तभी ये मानते नहीं थे, जाते थे वो कुछ नहीं देते थे। अच्छा तुम गाली तो मुझे देती है, ठीक है इसी को लेकर के जाओ। तो एक दिन वो पोत रही थी, जमीन साफ कर रही थी मिट्टी और कपड़े लगा करके, पहले का घर ऐसा मिट्टी का घर होता, बस उसी से उसने मिट्टी मारा, मरता नहीं है, फिर बार बार आता। उन्होंने उसको ले लिया और गंगा में धो करके, यमुना में धो करके, घी के साथ लगा करके और बत्ती दे दी उस बुढ़िया का कल्याण। कैसी भक्ति सहज, किंतु कोटि कोटि साधनों से ब्रज भक्ति नहीं होगी, ये बड़ा भारी कठिन। हम लोग ब्रज भक्ति की तरफ में ले चलना चाहते हैं, किंतु इसके खरीददार श्रोता बिरले हैं, लाखों में से करोड़ों में से दो एक मिले, ये नहीं मिले। रघुनाथ दास गोस्वामी इसके खरीददार हैं, ऐसे ऐसे हम लोग अभी खरीददारी में अभी नहीं आ सके, अभी इसके श्रोता नहीं है, तो साधारण आदमियों की बात है, बहुत कठिन है तू। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकर जिस प्रेमा भक्ति को, प्रेमा भक्ति से भी ऊपर, बैकुंठ में भी प्रेमा भक्ति है, साकेत में भी है, द्वारका में भी प्रेमा भक्ति है, किंतु उसे ब्रज लोग, ब्रज की भक्ति, इसको देने के लिए आए कितने लोग लेते हैं, बहुत कम, बहुत इन्हें भी समझ में नहीं आएगा उनको ये क्या भक्ति है। बहुत दिन संग करते करते और विशेष करके वैष्णव की कृपा हो तो इनको ये समझ सकते हैं। दिमाग में नहीं आता उनको, ये ऐसी दुर्लभ है। मान लिया चैतन्य महाप्रभु जी, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी बांट रहे हैं, लो भाई जिसको लेना है ये प्रेमा भक्ति ब्रज की भक्ति ले लो। काशी के नवदीप के पड़ुआ लोग आएंगे लेने के लिए, पड़ुआ लोग आएंगे क्यों नहीं आएंगे, काम पंडित विद्वान लोग आएंगे नहीं है, पंडित विद्वान मूर्ख लोग आएंगे मुस्लिम है। कौन आएगा? जिनका पहले का संस्कार हो जन्म का, या इसमें नए जन्म का ये गोष्ठ वैष्णवों का संग हो संस्कार जन्मे, तब प्रलय अधिकारी है। हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, कोई कोई एक आदमी भीतर में इसको ले सकेगा, बहुत कम आदमी ले सकेगा। वैसे सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, किंतु विचार पूर्वक तत्व पूर्वक इसको लेकर के जीवन में आचरण करेंगे, पहले श्रवण दशा, तब फिर वरण दशा, तीसरा होता पहले श्रवण करे तब तो, और इसके बाद में मरण करे तो फिर वरण करेगा। वरण माने क्या? अभिलाषा, अभिलाषा होना। वर्ण का माने ये नहीं जैसे जैसे विवाह होता वैसा वर्ण कर दिया, ऐसा नहीं। यहाँ वर्ण माने हम इसको समझते हैं कि ये ठीक है, ये हमको लेना है, ये भाव हमारा, ये चाहिए इसको। जैसे बागदान होता है ना, बागदान में क्या होता है, इस लड़के की शादी उस लड़की के साथ में, ये बागदान हुआ, अभी शादी नहीं हुई, अभी ठीक किया गया। वैसे हमको क्या चाहिए जीवन में, हमारे भक्ति का क्या उद्देश्य है, गोल क्या है, इस रूप में वर्णन करना। ये कब होगा? सुनते सुनते, संसार होते होते, संसारिक अभिलाषाएं सब छूट जाएगी, यानी कि भी कुछ संसारिक कोई भी चीज की आसक्ति नहीं रह जाएगी, शरीर का भी नहीं रहेगा, उस समय में भी आएगी। और वैसे वैष्णवों का संग उनकी कृपा में, संग से भी नहीं होगा। संग माने क्या? ऊपर वाला संग नहीं चाहिए, ऊपर का संग से नहीं है। जैसे कि ये उपनु नहीं नहीं जू जू होते हैं ना सिर में, वो आदमी के साथ ही नहीं रहते हैं किंतु संग नहीं करते, वो ऐसा नहीं। जो उनके विचारों को ग्रहण करके अपने जीवन को भी वैसा बना ले, ऐसा होना चाहिए। यह है वर्ण, मैं भी यही करूंगा, ऐसे ही चलूंगा, इस चीज को अपने जीवन का ध्येय बना लिया, ये तब होगा। ये कब होगा? नैमात्मा प्रवचने न लभ्यो मे दया बहुना श्रुते न जम एव एष विणुते, ये सब विणुते। कौन? कृष्ण जी इसको ये वर्ण करते हैं कि हमारा ये कृपा पात्र है महाप्रभु रूप सनातन गुरु भी, ये मेरा कृपा पात्र है। अंतर्यामी है ना ये लोग, ये देखते हैं कि ये कहाँ कैसा, ये कृपा करने लायक है, कृपा रहेगा कि नहीं। जैसे बाघिन का दूध अपने बच्चे के मुख में रह सकता है या पेट में या सोने के बर्तन में, और कहीं नहीं रह सकता है, वो फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये उससे भी अधिक। हम लोग अभी इतने दिन पाठ किया, मैंने समझता जैसे कितने आदमी समझे होंगे और कितने आदमी नहीं समझे होंगे, क्या किए, तभी अपनी बात हम लोग कहते ही चल रहे हैं। तो वैसे ही आज का जो विषय परम गंभीर है, बहुत गंभीर, ब्रज भक्ति से संबंधित है। हमारे संप्रदाय के बड़े बड़े लोग इसी में झगड़ने लग गए, जी गोस्वामी का ये विचार और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का विचार समझ ना सके। यदि समझते ना भक्ति विनोद ठाकुर जैसा, तो कोई ऐसा होता नहीं। इसलिए भजन माने क्या? प्रवचन न लभ्य, प्रवचन के द्वारा नहीं होगा। बहुना स्तुते न मेधया, बुद्धि से भी नहीं होगा, बुद्धि से भी नहीं होगा, बहुत सुनने से भी नहीं होगा, श्रुति से भी नहीं होगा, है? और का क्या क्या? आश्चर्यवत सुनोति जब, कोई आश्चर्य आश्चर्य के समान सुनता, और कोई
आश्चर्य,
ये उसी समय में होगा भाई, जब हमारा हृदय वैसा होगा, और थे गुरु जी चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वैसे वैष्णव जो है चाहेंगे, ये इसको हो जाए तब जमे एस विमुचे। तथापि देव पदम पूजत वै प्रसाद लेसानुगृहित एव ही प्रसाद लेसा लेस प्रसाद भी कृपा हो जाए तो वो चीजें, किंतु किसको पात्र तो होना चाहिए ना, पात्र होना चाहिए, वैसा पात्र मांजना रगड़ना साफ करना ये हमारे हाथ की बात, किंतु वस्तु आना ये हमारे हाथ की बात नहीं है। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु, वो तो फल है ना, वो अपने हाथ की बात नहीं है वो प्रभु, किंतु हाँ बर्तन साफ करना है, बर्तन हमारा है, इसको साफ कर देंगे, मल करके निकालने के ये हम कर। तो इनकी बातों को हम लोग समझ सकते हैं और तब फिर इसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए ब्रज भक्ति बड़ी दुर्लभ है और साधारण भक्ति बहुत सहज है, ये सब सहज अजान ली नहीं चाहने पर भी उसकी भक्ति हो गई, ऐसे दुराचारी। और वाल्मीकि जी भी उल्टा नाम जब तक जगाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, सच में उल्टा राम राम मरा 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 करते हुए, ये तो है बहुत सहज भक्ति, सहज है, किंतु ब्रज भक्ति जो है ये बड़ी दुर्लभ। और इसमें ब्रज भक्ति में भी ये गोपी भाव या श्रृंगार की भावना ये तो बहुत ऊपर की बात है, साधारण इसी के संबंध में यहां पर विचार चल रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी जज है, बहुत सुंदर विचारक हैं, इसलिए वो विचार करके और यहां पर अपनी राय दे रहे हैं। तो वो बतला रहे हैं भाई परखिया स्वखिया में झगड़ा कोई मत करो, समझने की चेष्टा करो। दोनों आचार्य दो रूप में एक ही चीज को वर्णन कर रहे हैं, एक ही चीज का वर्णन कर रहे हैं, दो चीज का नहीं, किंतु अपने अपने दृष्टि से एक तत्व की तरफ में देख रहे हैं और एक रस की तरफ से देख रहे हैं। इसलिए वो कोई आगे से देख रहा है, कोई पीछे से हाथी को देख रहा है, आगे से देख रहा है एक, पीछे से देख रहा है, दोनों को मिला करके एक होगा, दोनों के दृष्टि से तब वो जाकर के सुंदर होगा। इसी को ये बतला रहे हैं हमारे आचार्य चरण जी गोस्वामी ने इस श्लोक की टीका, उज्ज्वल निन्मणि की टीका और कृष्ण सुंदर भाग में कृष्ण की प्रकट लीला को योग के माया के द्वारा वर्णित बतलाया। गीता में भी ऐसा बतलाया गया, क्या बताया, योग माया
समाप्त
ना हम प्रकाश सर्वस्व
योग माया,
मैं सबके सामने प्रत्यक्ष कृष्ण है किंतु प्रत्यक्ष नहीं है। दुर्योधन देख करके भी कृष्ण को कृष्ण नहीं देख सका, कंस कृष्ण को देख करके भी कृष्ण नहीं देख सका, साधारण एक मनुष्य बस देख सका, बस इससे अधिक नहीं। कर्ण दुशासन इत्यादि सब नहीं देख सका। भीष्म पितामह जी ने आधा देखा, क्या देखा, आधा केवल तत्वगत देखा, इसके बाद में और सब चीज रसगत उन्होंने नहीं देखा। इसलिए यहां पर बतला रहे हैं जी गोस्वामी जी ने कृष्ण की प्रकट लीला को जो ये कहा कि योग माया के द्वारा रचित है, प्रकटित है, यह बात ठीक है। भागवत में तो बहुत जगह बतलाया, क्या है उसको बताया है, योग माया के द्वारे इस जगत में प्रकट किया है। दर्शयिता नहीं नहीं तुम लोग याद नहीं रखता, सौभगे परम पदम भूषण भूषण, मूल क्या है छठ मतलब मूल क्या है, जन्मत्त लीलोपैकम सजोग माया बलम दर्शयिता गृहीतम, विस्मापनं च स्वस्थ गर्भे परम पदम भूषण भूषण। योग माया के बल को दिखलाने के लिए उन्होंने गोलोक वृंदावन से इस लीला को इस जगत में अवतरित कराया है। क्या बल? निर्बल ये जो जीव हैं, इनको बल दिखलाने के लिए, माने उनको बल देने के लिए और लेकर के उन्हीं कथाओं का श्रवण करके स्मरण करके और ये लोग भी ये बल दिखलाने का। कैसे? उनके लिए उपयोगी मर्त लीलोपयोगी, मर्त जीव जो है, मरणशील जो मनुष्य है, इन लोगों को उपयोगी बनाया। कैसे उपयोगी बनाया? जैसे स्त्री पति को प्रेम करती है, माने रुक्मिणी सप्तभामा कृष्ण को पति के रूप में प्रेम करती है, कोई बेटे के रूप में बेटे को पिता बन करके स्नेह करता है, जब वो ऐसा ही कहीं दूसरी जगह देखता है तो अपने प्रेम को वो स्मरण करता है, जब वो नंद बाबा को कृष्ण को दुलार करते हुए देखते हैं तो इनके अंदर में भी अपना बात्सल्य भाव संसारिक भाव बढ़ता है, क्योंकि दोनों का नहीं करते हैं ना एक जैसे देश। लोग साधारण तरह से कोई लड़की या लड़का परस्पर प्रेम करते हैं, स्वाभाविक है ऐसा, है ना? तो वैसे उसी के समान देखने में लगता है कि कृष्ण ने गोपियों के साथ, गोपियों ने कृष्ण के साथ में प्रेम किया, एक जैसा दिखता है, समजाती। तो उनके लिए उपयोगी है। कृष्ण ने अपनी ऐसी ही लीला प्रकट क्यों की? ऐसे जीवों को खींचने के लिए, ऐसे लीला जिनके जिनके भावना के अनुरूप हमारी लीला होगी वो आकर्षित होकर के इधर ले जाए। दिल व मंगल चिंतामणि को प्राण से भी अधिक प्यार करता था, थोड़ा सा झटका लगा और वो क्या हुआ, वो प्रेम कृष्ण की तरफ में आ गया। इसीलिए बतलाया है अविवेक या किसी अविवेकिना या सुतीर अविवेकिना विषय संपायनी सामन सरता सामे हृदय माम अपसरपतु। या कृति अविवेकानाम, अविवेकानाम माने जिनको विवेक नहीं है, वो ऐसे विषयी लोग हैं जिनको विवेक नहीं है। क्या? दो दिन के बाद तो मरेंगे। ये शरीर हार्ड क्या मांस का है, ये शरीर नश्वर और दुखप्रद है। इसको जिसको ज्ञान नहीं है वो है अविवेकी विषय। तो विषय लोगों का जैसे विषयों में प्रीति है, कैसी प्रीति है, कैसी प्रीति? अविवेक युक्त प्रीति है, मोह है, किंतु प्रीति बतला रहे। प्रीति मैंने इन लोगों की संसार के प्रति जैसे प्रीति है वैसे ही प्रीति हमारे अंदर से आपके प्रति अभी भी रहे और भविष्यत में भी ऐसी प्रीति हमारे हृदय से न चली जाए। ये कैसे? वो जो कल वो वहां पर उदाहरण देकर के बतलाया ना, इस उदाहरण के द्वारा जो 25 रुपया में एक को कलकत्ते में चटकल में नौकरी मिली, दिन भर परिश्रम कर रहा, कठोर रूप में परिश्रम कर रहा, 10 बजे जाता है, शाम को 4 बजे वो आता है, क्या करता है, बोरी धोता है, बोरू पर लेकर के जाता है दुमंजिल तिमंजिल में और वहां से आकर के आता है और 25 रुपये उसको एक महीने में मिलते हैं, 5 रुपये अपने लिए रख करके बाकी सब। 5 रुपये में कैसे होगा, घर का किराया नहीं देना पड़ता उसको, क्यों? पेड़ के नीचे रहता है फुटपाथ पर, और खाने में रसोई सोई बनाता है नहीं, सत्तू खरीद लिया और गमछा में उसमें पानी दे करके ऐसे ऐसे कर दिया, गंगा में डुबा दिया और ले करके ऐसे मल करके और खा लिया, और अंजलि से पानी लोटे की जरूरत नहीं, थाली की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। एक बार खाता है सवेरे 10-12 बजे बस। न थाली की जरूरत, न लोटा की जरूरत, न रसोई की घर की जरूरत, न कि कोई बासी, और कोई जब भी इच्छा हो तभी बना लो खा लो। जहां कहां भी बाजार में देखते हैं सड़क के किनारे में बस बैठे हुए खा रहे हैं, बस पी लिया पानी, बस हो गया।
कुछ का 5 रुपए में किसी प्रकार से वो कर लेता है गुजारा, बड़ा कष्ट करके दूसरों को कष्ट मान, ये बड़ा सुखी है। एक आदमी ने कहा जी भैया 25 रुपया पाता है, तुम 20 रुपया घर में देता है, 5 रुपया अपने लिए रखता है और बड़ी कठिनता से कठोर रूप में रह करके दुख पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता है, तो तुम ऐसा करो आधा भी क्यों नहीं दे देता, घर में आधा दो, यहाँ पर आधा ले लो, 12.5 कर दो। उसने कहा जी नहीं भैया, हमारा एक छोटा सा लाला है, अभी अभी 1 वर्ष का हुआ है, यहाँ से रुपया नहीं भेजे।
अभ्याम इति निरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाप्रसन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते।
ये क्या हुआ, अन्नाभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ये दो हुआ। और अनुकुल्य ने कृष्ण स्वयं वो पैसा कमा करके 12 घंटे 10 घंटा काम करता है और वो पैसा लेकर के उसमें लगाता है, ये हुआ अभ्यास। किस लिए, ये सब का मूल क्या है, बच्चा हमारा बड़ा प्रेम का है, वो सुखी रहे, और जब सुनते हैं कि वो बड़ा सुखी है तो हमारा हृदय सुखी हो जाता है, अपना दुख मैं भूल जाता हूं। ये प्रीति है ना, या प्रीति अभी देखी ना, वो बड़ा लड़का हो करके और पिताजी को धत्ता बतला दिया और माताजी को भी हटा दिया और अपनी पत्नी को लेकर के सुख से रहा है, पिता माताजी को कुछ नहीं पूछता, वो भी जानता होगा किंतु अभी ये नहीं, ये बेटा और सब हमको छोड़ गए 7 लड़के किंतु ये बेटा नहीं छोड़ेगा, ऐसी बनी हुई है ये अभी भी। वैसी प्रीति हमारे अंदर में हो, उनके सुखी में सुखी, उनके दुख में दुखी, तो भगवान तो कभी दुखी होंगे नहीं, इसलिए तत् सुखी सुखित से। और अनुकूल अनुशीलन, कैसे बच्चा सुखी रहेगा, अपने सुखी रहेगा ये भावना नहीं, अपने दुख को भी सुख मान रहा है और कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है, केवल बच्चा बड़ा हो जाए ठीक रहे, ये है विषय लोगों का अब अविवेक पूर्ण उसमें मोह, किंतु यहां पर प्रीति काल। ऐसी ही प्रीति हमारी भगवान में हो, भगवान के सुख में सुख। अब भगवान के प्रतिनिधि गुरु हैं, वैष्णव हैं, इसलिए यहां पर अभी हमारे साधन के समय में गुरु और वैष्णव के सुख में सुख और सब समय उनको सुखी करने का प्रयास, अपने लिए नहीं, कभी हो मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, भक्ति नहीं हुई है और अन्नाभिलाष रही और दूसरा कोई नहीं, बस उनकी प्रीति कैसे हमारी हो, उनको कैसे खुशी कर सकूं, ये 3 चीजें होने उसमें अत्यंत आवश्यक है, तब वो भक्ति हो। हम लोगों में से 3 में से कोई एक होता है, कोई एक नहीं होता, असल वाला नहीं होता, ये कब होगा, इसीलिए बतलाया गया कृष्णार्थे अखिल भोग त्याग और कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, ये दोनों क्या है, तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं है, ये कभी इसकी आवश्यकता, तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण क्या है, ये दोनों नहीं रहने पर भी अनुकूल अनुशीलन होता है, ये स्वाभाविक है। ये समझेगा कौन, कौन समझेगा, जिसका संस्कार नहीं है समझेगा, और जो समझेगा नहीं वो करेगा, समझने वालों में भी करने वाले कितने हैं ऐसे, रोज तो हम सुनते हैं करते कितने हैं, यदि करेंगे तो वो ये उत्तमा भक्ति करने का ये है, तब इन चीजों को अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए दिए जाने पर भी महाप्रभु रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी गोस्वामी, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि हमारे गुरु जी दे रहे हैं, बांट रहे हैं,
किंतु लेने वाले कौन है, हाथ बढ़ाते हैं किंतु हाथ में कुछ आता नहीं है, इसीलिए इसलिए कहते हैं इस लीला को जोग माया ने प्रकट किया इस जगत में। कौन कहा? जी गोस्वामी जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी समझा रहे हैं। उन्होंने कहा है, कौन? जी गोस्वामी माई, इसको थोड़ा कहता हूं पीछे, माइक धर्म के संबंध से स्पष्ट होने के कारण उसमें मायापद सहित कुछ कार्य दिखते हैं। भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं, भगवान की कथाएं होती हैं, भगवान का नाम होता है, ये अप्राकृत है। किंतु जब इस माइक जगत में वो उतरती हैं तो माइक भाषा का प्रयोग, माइक दृष्टि का प्रयोग, माइक कान, माइक ये सब चीजों के द्वारा उनको देखना पड़ता है। कौन? बद्ध जीव जीव। और जो मुक्त जीव हैं वो तो जैसे नारद इत्यादि हैं वो तो समझ जाते हैं, किंतु उस समय में जो बद्ध जीव होते हैं कृष्ण लीला के समय में, कृष्ण के लीलाओं को जो देखते हैं वो तो आंख से ही देखेंगे ना, तो आंख में हमारी क्या चीज है, कान में माया है, ये सब माई की चीजें हैं, इसलिए उस चीज को हम लोग अच्छी तरह से नहीं देखते। कृष्ण गोपियों को प्रेम करते थे और गोपियां कृष्ण को प्रेम करती थी, प्यार करती थी। क्या समझेंगे हम? जैसा हम किसी को प्यार करते हैं वैसे ही तो करते होंगे, इसलिए इससे अधिक की धारणा नहीं होगी, किंतु बात ही कुछ बिगड़ी ऐसी नहीं। इसलिए माया का प्रभाव जरूर पड़ेगा, इसलिए शुद्ध वस्तु वहां से जब उतरती है जोग माया के प्रभाव से, तो इस जगत में जब उतरने पर माया का मल चूंकि बद्ध जीवों के ऊपर में लगा रहता है, उसी के अनुसार में उसको देखना है। तरह तरह के चश्मे हो तो सूर्य की रश्मि तरह तरह से दिखेगी, जैसा चश्मा होगा सूर्य की किरणें उनका प्रकाश भी लाल, नील, सफेद या जैसा दिखेगा। यह सूर्य का दोष नहीं है, ये उस व्यक्ति का दोष है ने? उसी को कह रहे हैं मायापत्तिक भाव। मायापत्तिक माने हमारे शरीर में, हमारे अभिबद्ध अवस्था में माया है, यही उस पर लागू किया। जैसे कहा जीवात्मा सच्चिदानंद वस्तु कृष्ण का दास है, समझ लो तो क्या समझो, क्या समझेंगे हम? जैसे एक बड़े धनी के घर पर, दुकान पर एक मुनीम जी 2000 रुपए में रख रखा है, मुनीम को रखा है ना नौकरी पर, उनको पैसे देते हैं, वो उनका काम कर देते हैं, तो मैं भगवान का दास हूं। इसी तरह से नकिया होगा, इसमें कोई संबंध नहीं है, बस दास शब्द यहां कह दिया, प्रेम कर दिया, जो गोपियां कृष्ण को प्रेम करती हैं, विवाह तो उनका है नहीं, अब वो प्रेम कैसा होगा? इस जगत में जैसा हम प्रेम करते हैं बस इसी की धारणा होगी और ऊपर की धारणा नहीं होगी। इसी चीज को समझा रहे हैं कि वो माया का भाव उसमें है तो बस सुशुद्ध, किंतु इस जगत में आने से माया का भाषा का मल इत्यादि। जैसे देखो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं विग्रह क्या है, ये सच्चिदानंद विग्रह है ना, है सच्चिदानंद विग्रह की नहीं, ये
है,
किंतु उपलब्धि है, उपलब्धि नहीं, ये भगवान है ये उपलब्धि नहीं है। हम इसलिए मानते हैं कि लिखा गया है और वैष्णव लोग आते हैं सुन करके, अपनी उपलब्धि रहती तो इनके अंदर में कितना प्रेम होता, जैसे मुक्त पुरुषों का स्वभाव। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कोई साधक साधन करते 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 साधन से भाव अवस्था में गया और भावावस्था से अब प्रेम परिपक्व होने लगा है, आने लग गया है, उस समय में माया के गुणों से रहित होकर के पहले वो क्या होता है आसन, हाँ आसन प्राणायाम ध्यान धारणा, इसके बाद में समाधि इत्यादि होता है, बहुत दूर होता है। इसमें भी चार प्रकार के प्रधान हैं। जब हम ध्यान करने जाते हैं तो पहले अवस्था में धारणा होती है, वस्तु को चिंतन करते हैं किंतु फिर वो अदृश्य हो जाती है, बार बार विक्षेप उसमें आएगा, जब टिकने लग जाएगा ना तब वो धारणा होगी, कुछ धारणा करने लगेगा। इसके बाद में और बढ़ने लगा, पहले होगा अनुस्मृति थोड़ा थोड़ा, और इसके बाद में फिर समय बढ़ता जाएगा तो वो पीछे ध्रुवानुस्मृति माने वो स्मृति ध्रुव हो जाएगी पक्की, दो घंटा चार घंटा पांच घंटा नहीं इधर उधर होगा, और इसके बाद में समाधि हो समाधि ना, इस प्रकार से वो बढ़ता है उधर में। तो मैं किस लिए कह रहा था, ये याद है माता माया प्रत्यय भाव। तो जब ये सब चीजें दूर हो जाता है, विक्षेप इत्यादि सब दूर हो जाता है, तो माया के मल से रहित होकर के समाधि स्थिति में वो अपने इष्ट देव का दर्शन करता है, कहां आत्मा के द्वारा, निर्मल आत्मा के द्वारा, जैसे रूप गोस्वामी किया। और जब वो अपने अर्धज्ञान बाह्य अवस्था में आते हैं, जब आधा ज्ञान रहता है आधा ज्ञान नहीं रहता है, तो उसको मन पर प्रतिफलित वो मूर्ति होती है मन पर। और जब बाह्य ज्ञान में आ जाते हैं ऐसे, तब वो याद रहती है मन वाली मूर्ति। अब उसी के समान में मट्टी की प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा और ये सब के रूपों में इस जगत में प्रकाश करते हैं। जब उसको देखते हैं तो उसकी याद आती है, किसकी?
पहले ये देखा था
अंतर वाली आत्मा वाली,
अंतर दशा में ये देखा था,
और वो काम करने लगती है ठीक एकदम है? और वो सच्चिदानंद मूर्ति है, कौन? मन आत्मा वाली, और प्रतिफलित हुई तो उसको ये रिमेम्बर कराने वाली है,
मनोमयी हुआ
ये मनोमयी हो गई, और मनोमयी से फिर आया बाह्य
विग्रह के रूप,
इसलिए विग्रह जो है वो चिन्मय है, किंतु हम समझ नहीं पाते हैं इसमें तर्क वितर्क। जयपुर में बनाया और कह रहे हैं जो मनोमयी है ना, कैसे मनोमयी हो गई? ये तो जयपुर में बनी, पत्थर की बनी है, अरे ये मथुरा में बनी पीतल की मूर्ति, और आप कह रहे हैं जैसे ये चिन्मयी मूर्ति है, कैसे? अजय बेटा ऐसे नहीं समझेगा, साधन करते करते जाओ और हरिनाम करो, चिन्मय तुम्हारा स्वरूप होता जाएगा और तब उसकी उपलब्धि तुमको होगी, ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। एक लड़की ने कहा 6-7 वर्ष की, मैया जब हमको बेटा होगा ना तो तुम हमको जगा देना। कहिए तुम तो गांव भर को जगा देगी, तुमको जगाने की जरूरत नहीं होगी, तुम गांव भर को जितनी है ना सबको पास पड़ी ही सबको जगा देगी। वो समझती नहीं, ऐसे ही भजन पहले करें, करते 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 चिन्मय भाव उदित होगा, उस समय इन लीलाओं को समझा जा सकता है, ऐसे नहीं। इसलिए माइक धर्म से संबंध होने से उसमें माया प्रत्यय भाव जरूर होगा। देखेंगे क्या माया भाव प्रत्यय भाव, जसोदा जी की नाड़ी कति, अब उसमें माया प्रत्यय भाव आया ना, कृष्ण की जसोदा की कभी नाड़ी कटती है, काटने की जरूरत है माया भाव, किंतु वो दिखता है लाला बड़ा हो रहा है, छोटा सा था ना, छोटे से चलते कहते घुटुरुओं पर चलना लगा, फिर खड़ा होने लगा, फिर छोटा छोटा नुपुर यहाँ पर बांध दिया, और कभी कभी तलमल करता हुआ चलता है, कभी गिरता है कभी दौड़ता है, फिर और बड़ा हो जाता है। ये माया प्रतिविध भाव जरूर रहेगा। कृष्ण का ऐसा होता है जो कृष्ण में रूपांतर होता है, छोटे से बड़े होते हैं कृष्ण, ऐसा होता है, किंतु माया का धर्म ऐसा दिखता है, कृष्ण नित्य किशोर है, तो कहो जैसे कृष्ण की लीला वहां पर नहीं है, यही तुम्हारे समझ में नहीं है, यही माया प्रतिभाव इस जगत में बात है, नहीं समझेगा। इसलिए भजन के द्वारा जितना ही चित्त को शुद्ध करोगे उतना ही माया का मल दूर होता जाएगा और कृष्ण स्पष्ट रूप में दिखे, सब भाव स्पष्ट हो, फिर उसमें पूछने की जरूरत नहीं हो, ऐसा भजन करो सब। जैसे कृष्ण की लीलाएं बहुत प्रकार की है, असुरों का संघार, परदारा संग्रह माने दूसरों की विवाहिता स्त्रियों से प्रेम करना, जन्म आदि लीलाएं, ये सब क्या चीज है? उस पर जगत में असुरों का संहार नामों कोई कोई चीज है कि नहीं? उस जगत में नहीं है, कुछ भी नहीं है। लीला की संपुष्टि के लिए भाव वहां पर केवल है, लीला की संपुष्टि, वो भी भाव नहीं आसुरिक है, क्योंकि जो असुर रहेगा भजन करते 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 असुर कोई रह जाएगा? वृत्तासुर असुर रह गया? नहीं रहेगा। इसलिए साधन अवस्था में ही छल छंद जुआ चोरी बदमाशी व्यभिचार लामपट इत्यादि जो आसुरिक भाव है, मार करता हत्या करना, ये सब साधन अवस्था में ही दूर हो जाते हैं। तो सिद्ध अवस्था में असुरत्व रहेगा कहां? नहीं रह सकता है, इसलिए वहां पर ये नहीं, केवल लीला की उपयोगी उस भाव है बस। वो भी भाव किस लिए? इस जगत में अवतरण किए हुए उसी का वो कुछ है, वहां पर जरूरत नहीं इसकी। यदि कहो जी